त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु स्वरूप पांचों परमेष्ठी भगवंतों अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठियों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी पर्यंत 24 धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकरों को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धनंदर आचार्य चरित्र चक्रवर्ती शांत सागर महाराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। अरहंत परमेष्ठी को लेकर के विभिन्न ग्रंथों में जो गाथाएं आती हैं, अब भगवान के 46 गुणों का जो वर्णन था तीर्थंकर भगवान के, उनमें फिर जो तीर्थंकर नहीं हैं उनके जन्मातिशय अथवा देवातिशयों में अंतर पड़ता है। अनंत चतुष्टय सब में होता है और फिर नाम कर्म के भेद हमने बतलाए थे। 13वें गुणस्थान तक जो नाम कर्म उदय में है, तीर्थंकर के अतिरिक्त जो अन्य केवली हैं उनमें कुछ भिन्न प्रकार के नाम कर्म भी उदय में होते हैं। जैसे अप्रशस्त विहायो गति का उदय 13वें गुणस्थान में बताया था, तो केवल ज्ञान हो चुका है लेकिन चाल जो है उनकी टेढ़ी मेढ़ी है, सुंदर चाल नहीं है। फिर अशुभ नाम कर्म का उदय है तो वो दिखने में आकर्षक नहीं है। ऐसे अन्य भी कर्म हैं जिनकी चर्चा पहले की थी, तो सिद्धांत में ये कथन है कि ऐसा उदय होता है वहाँ तक, केवल ज्ञान के बाद भी इन कर्मों का उदय रहता है। तो अगर उदय रहता है तो इसका मतलब ये है कि उनका कार्य होता है उन कर्मों को, लेकिन वो कर्म चूंकि आघाती कर्म है इसलिए भगवान के अनुजीवी गुणों का घात नहीं कर सकते। और भगवान के अंदर जो अनंत चतुष्टय है वो तो जैसे तीर्थंकर में है वैसे ही उनमें भी है। और आत्मा के जो तीन भेद बताए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, उनमें से उनकी श्रेणी परमात्मा में ही आएगी, इसलिए वो तो असाधारण त्रिलोकी नाथ ही रहेंगे। तो इस अपेक्षा से अपन विचार करते हैं तो फिर ये बात संदेशात्मक रूप से प्राप्त होती है कि हर चीज A1 हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो बाह्य शोभाएं हैं उसमें न्यूनता होते हुए भी अंतरंग शोभा अपनी पराकाष्ठा पर जा सकती है। तो 34 अतिशय, 8 प्रातिहार और अनंत चतुष्टय इनकी चर्चा चल रही थी। तो बहुत सारी गाथाओं का हमने संग्रह किया था, तिलोय प्रणति, नियम सार, धवला, मूलाचार, द्रव्य संग्रह, पंच महागुरु भक्ति, संस्कृत पंच महागुरु भक्ति, क्रियाकलाप, गोमट सार, जीवकांड, इतने ग्रंथों से हम संग्रह करके गाथाएं लाए थे। तो उनमें पहले अपन देखते हैं तिलोय पंडित में भगवान जिनेन्द्र के बारे में क्या कथन है। बिल्कुल प्रारंभ में जो मंगलाचरण है वहाँ पर ये गाथा आई है। घनघाई कम महणा त्यूवण वर भव कमल मत तंडा अरिहा अनंत नाणी अणुवम सुखा जयंतु जये। घन घाई कम महणा, घन घाती कर्मों का मथन करने वाले विनाश करने वाले, और तिहुवण वर भव कमल मत्तंडा, तीनों जगत के जो उत्तम भव्य जैन हैं, उन भव्य जीव रूपी कमलों के लिए अरहंत प्रभु मार्तंड स्वरूप है। मार्तंड का अर्थ सूर्य होता है, जैसे कमल सूर्य की किरणों से प्रफुल्लित हो उठता है, वैसे ही भव्य जीव अरहंत से उनके सानिध्य को पाकर प्रफुल्लित हो उठते हैं। और अनंत नाणे अणुओं में सोखा, वो अनंत ज्ञान में विराजमान रहते हैं, अनुपम सुख से संपन्न होते हैं, ऐसे अरिहा जय जय वो इस जगत में जयंतु सर्वोत्कृष्ट हैं। जय का अर्थ होता है सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति जयति, जो यानी जिनके सामने सब पराजित हो वो विजयी कहलाते हैं। तो अरहंत भगवान जयवंत क्यों है? क्योंकि अरहंत सर्वोत्कृष्ट। फिर नियमसार ग्रंथ में अरहंत भगवान का वर्णन है, घनघाई कम रहिया केवल नाणाई परम गुण सहिया, चोती से जुत्ता अरिहंता एरिसा होती। घन घाती कर्मों से रहित, तिलोय पंडित्ती की दूसरी गाथा में भी घन घाई कम महणा, घन घाती कर्मों का मथन करने वाले, नाश करने वाले, और यहाँ पर घन घाती कर्मों से रहित और केवल ज्ञान आदि परम गुणों से जो सहित हैं, न केवल लब्धियों से जो संपन्न है, और 34 अतिशय जुत्ता, 34 अतिशयों से युक्त है, वे अरिहंत ऐसे होते हैं। नियम सर कुंदकुंद आचार्य लोहे पंडित में यति वृषभ आचार्य महाराज ने लिखा था। अब इसके बाद धवल ग्रंथ में देखिए क्या कह रहे हैं, निदद मोह तरुणो विथिन्न सायर रुतिन्ना निहयनीय विघवग्गा बहुबाह विनिगया अयला। गलियमय नपया वा तिकाल विषयी तीह नयनी दिठ सयलठ सारा सुदद त्यूरा मुनि वैणु तिरेण तिशूल दारिय मोहनधासुर कबंद बिंद हरा सिद्ध सैल परुवा अरहंता दुन्नय कयंता। क्या सुंदर गाथा है, तीन गाथाएं धवला की पहले पुस्तक में दी अरहंत भगवान को लेकर। उसमें लिख रहे हैं कि जिन्होंने मोह रूपी वृक्ष को निर्दग्ध कर दिया, जलाकर राख कर दिया, जो विस्तीर्ण अज्ञान रूपी सागर से पार निकल गए, अर्थात अज्ञान से मुक्त हो गए, केवल ज्ञान से संपन्न हो गए, जो निहय निय विघ वग्गा अपने विघ्न वर्ग का नाश कर चुके हैं। अब अरहंत भगवान के लिए कोई विघ्न नहीं रहा, जो बहुबाह विनी गया अनेक प्रकार की बाधाओं से बाहर आ चुके, और जो सप्त धातुमय औदारिक शरीर है उससे रहित होकर परम औदारिक शरीर के धारी बन गए। बहुत बड़ी घटना है ये। जो दलीय मयण पयावा, दलीय मयण पयावा, जिन्होंने काम के प्रताप को कुचल डाला, अर्थात जिन्होंने काम के पराक्रम को पराभूत कर डाला, जो निष्काम हो गए, तिकाल विषयी ती नहिनी दिट्ठ सय लठ सारा, जिन्होंने तीन नेत्रों से, जो कि तीन कालों को विषय करने वाले हैं, ऐसे तीन नेत्रों से जिन्होंने संपूर्ण पदार्थों के सार को देख लिया, और जिन्होंने सुदद तीव्रा जन्म जरा और मरण रूपी तीन नगरों को अच्छी तरह जला डाला। अब अरहंत भगवान का मरण पंडित पंडित मरण की श्रेणी में परिगणित होता है, पर वास्तव में वो संसारी प्राणियों जैसा मरण न होकर निर्वाण होता है, मोक्ष होता है। निर्वाण, मोक्ष, अपुनर्भव, अपवर्ग आदि सब पर्यायवाची शब्द हैं। मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति, अपुनर्भव, अपवर्ग, ये सारे एकार्थवाची शब्द हैं। और जो मुनि वैणो सब मुनियों में श्रेष्ठ है, अरहंत देव। देखो, अरहंत भगवान भी मुनि ही है, लेकिन मुनियों में शिरोमणि है। मुनि शब्द का अर्थ सिद्धांत में प्रत्यक्ष ज्ञानी होता है, तो प्रत्यक्ष ज्ञानियों में सर्वोपरि अरहंत भगवान है, क्योंकि केवल ज्ञानी है। और तेरयण तिसूल दारिय मोहन दासुर कबंद बिंद हरा, मोह रूपी अंधासुर, इतर संप्रदायों के पुराणों में अंधासुर की कथा आती है, तो उसकी जो कबंध है, कबंध का अर्थ होता है शीश रहित धड़, उनके वृंद को तीन रत्न रूपी त्रिशूल द्वारा दारित करने वाले, अर्थात मोह का नाश करने वाले। ये अलंकारिक वर्णन होता ही है, मोह के नाशक। और सिद्ध सैलप रूवा, अपने आत्म रूप को, अपने संपूर्ण आत्म रूप को सिद्ध करने वाले, और दुर्नय कयंता, दुर्नयों का अंत करने वाले, मिथ्या ज्ञान को नष्ट करने वाले अरहंता, अरहंत भगवान होते हैं। तीन गाथाओं में अरहंत का सुंदर वर्णन किया वीरसेन आचार्य महाराज ने। फिर धवला की पुस्तक नौ में फिर से उन्होंने अरहंत भगवान का वर्णन करते हुए क्या लिखा, तिहुवर्ण भवर्ण पसरियो पच्चक भूह किरण परिवेढ़ो, उयो वि अनथ मनु अरहंत दिवायरो जयो। तीनों भुवन रूपी भवन में विस्तृत हुई है प्रत्यक्ष ज्ञान की किरणें जिनकी, और जिन्होंने सारे जगत को अपने ज्ञान की किरणों से परिवेष्टित कर लिया है, जिन्होंने सब कुछ प्रकाशित कर दिया अपने केवल ज्ञान के द्वारा, और जो उदित होकर भी कभी अस्त को प्राप्त नहीं होने वाले, ऐसे अरहंत देव रूपी असाधारण सूर्य सर्वोत्कृष्ट है। अब ये गाथा गाथा का संग्रह अर्थ तो हम आपको सुना रहे हैं, अर्थ सहित यदि इसका संग्रह हो तो बड़ा आनंद आ जाए। और अन्य ग्रंथों में भी जहां जहां पर अरहंत आदि का वर्णन आता है, वहां से भी अपन और गाथाओं का संग्रह कर सकते हैं और काव्यों का संग्रह कर सकते हैं। मूलाचार ग्रंथ में लिखा है, अरिहंतिणमोकारम अरिहा पूजा सुरुत्तमालोए रजहंता अरिहंतीय अरहंता तेण वचंती। जो नमस्कार के योग्य हैं और इस जगत में जो देवों के द्वारा की जाने वाली उत्तम पूजा के योग्य हैं, जो रज का हनन करने वाले हैं अर्थात ज्ञानावरण और दर्शनावरण का घात करने वाले हैं, जो अंतराय का नाश करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा को जो इतनी योग्यताओं से संपन्न है, ऐसे परमात्माओं को उस कारण से उनके अंदर वैसी क्षमता है, उस कारण से अरहंता वचन्ति अरहंत कहा जाता है। द्रव्य संग्रह में क्या लिखा, नट चदुघाई कम्मो दंसन सुहनान वीर्यमयो सुहदेहतो अप्पा सुद्धो अरिहो विचिन्ते जो। नष्ट चतुः घाति कर्मा, जिन्होंने ना चार घाती कर्मों को नष्ट किया और चार घाती कर्मों को नष्ट करने से क्या हो गया, तो बोले दर्शन सुख ज्ञान और वीर्यमय हो गया, निर्वृत्तम मयट। मय शब्द का, मय प्रत्यय का प्रयोग वहां होता है, माने वो उस रूप हो गए, वैसे बन गए। रचना के अर्थ में मयट का प्रत्यय होता है, स्वर्णमय का अर्थ होता है सोने से बना हुआ, रजतमय का अर्थ होता है चांदी से बना हुआ, ताम्रमय का अर्थ होता है तांबे से बना हुआ, लोहमय का अर्थ होता है लोहे से बना हुआ। दुर्योधन के भांजे कुर्यवर ने पांडव मुनि राजों को लोहमय आभूषण पहनाए, तपे हुए, ये सुना है ना आपने, पांडवों को अंत में बड़ा भयंकर उपसर्ग जीतना पड़ा था, कुर्यवर उसका नाम था दुर्योधन के भांजे का, उसने उपसर्ग किया था, अग्नि में लोहमय आभूषण तपा करके उनको पहना दिए। उन्होंने समता भाव धारण करके उपसर्ग को जीता और तीन मोक्ष चले गए, शत्रुंजय गिरी से। दो सर्वार्थ सिद्धि चले गए, अनुत्तरोपादिक दशांग में उनका वर्णन है। तो दर्शन सुख ज्ञान और वीर्य मैं है अरहंत देव, और सुहदेहत्थो परम औदारिक देह में विराजमान है, देह में स्थित है। श्रीमद रायचंद जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र करके गुजराती रचना की है, काव्य रचना। उसमें एक दोहा उन्होंने गुजराती में लिखा है, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मा वंदन हो अगणी। देह छता अर्थात देह होते हुए भी जेनी दशा, जिनकी दशा देहातीत वर्ते, शरीर रहित जैसी जिनकी दशा हो गई है, ते ज्ञानी अरहंत केवली भगवान ना चरण मा उनके चरणों में हो वंदन अगणित, अगणित वंदन हो। शुद्धो अरि हो, और अरहंत भगवान शुद्ध है ऐसा विचिंतित जो भगवान का ध्यान करें, जब भगवान का ध्यान करना हो तो ऐसा ध्यान करें। फिर पंच महागुरु भक्ति में एक जाति छंद है, लेकिन लय एक वृत्त छंद के समान, स्रग्विणी छंद के समान है, पर छंद जाति छंद मात्राओं वाला छंद। जिन छंदों में अक्षर गिने जाते हैं उनको वृत्त छंद कहते हैं, और जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं अक्षर नहीं गिने जाते उनको जाति छंद कहते हैं। काव्य शास्त्र में दो प्रकार के छंद बताए, जाति छंद जिनमें मात्रा गिनी जाती है, वृत्त छंद जिनमें अक्षर गिने जाते हैं। तो ये मात्रा वाला छंद है, लेकिन लय वही है स्रग्विणी की। तो एक संगीतकार एस एन त्रिपाठी हुए हैं, आपने संभवतः नाम सुना ना किसी ने, वो 40 के दशक में जिस मूवी में उन्होंने संगीत दिया था उसी मूवी में, मूवी का नाम था राम भक्त हनुमान, वो पहलवान थे, वो संगीतकार, वो खुद हनुमान बने थे। तो उन्होंने इस त्रग्विणी छंद की जो इस छंद की जो लय बनाई है वो ऐसी है, मणिर्णा इंद सुर धरिय छतया, मणिर्णा इंद सुर धरिय छतया, पंच कल्याण सुखावली पतया, दंसरणं नाण झाणं अनंतं बलम्, दंसरणं नाण झाणं अनंतं बलम्, तेजिणा दिन्तुवं हंवरं मंगलम्। राग भोपाली, मनुष्यों के इंद्र, नाग कुमारों के इंद्र और देवों के इंद्र ने जिनके ऊपर छत्र धारण किए हैं, तो ऐसे तीन छत्रों के धारी जिनेंद्र भगवान अरहंत देव होते हैं, और पंच कल्याण सौखावली पत्या, पंच कल्याणकों की सुख पंक्ति को जिन्होंने प्राप्त किया, अर्थात पंच कल्याणकों का सौख्य और वैभव जिनको प्राप्त हुआ, जना वे जिनेंद्र भगवान वे अरहंत देव अम्मम हम सबको वरम मंगलम उत्कृष्ट मंगल स्वरूप दंसनम दिंतु दर्शन प्रदान करें। उत्कृष्ट मंगल स्वरूप नाण झाणम ज्ञान प्रदान करें। उत्कृष्ट मंगल स्वरूप ध्यान प्रदान करें। और उत्कृष्ट मंगल स्वरूप अनंत बल अनंत वीर्य अनंत शक्ति प्रदान करें। फिर संस्कृत पंचगुरु भक्ति में अरहंत भगवान का वर्णन करते हुए लिखा है, श्रीमद अमरेन्द्र मुकुट प्रघटित मणिकिरण वारिधारा भी प्रक्षालित पद युगलान प्रणमामि जिनेश्वरान भक्त्या। वैभव संपन्न देवों के इंद्रों के मुकुटों में जड़े हुए रत्नों की किरणों की जल धाराओं से जिनके चरण युगल प्रक्षालित हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं है? देखो क्या होगा, कोई बात सुनते समय आप सावधानी से सुनेंगे ना तो चूक नहीं होगी, और ऐसे थोड़ा डीले हो गए तो गया काम से विषय। फिर से पढ़ रहे ना, श्रीमद अमरेन्द्र मुकुट प्रघटित मणिकिरण वारिधारा भी प्रक्षालित पद युगलान प्रणमामि जिनेश्वरान भक्त्या। तो जिनेश्वरान प्रणमामि, मैं जिनेश्वरों को प्रणाम करता हूं। कैसे हैं जिनेश्वर? प्रक्षालित पद युगलान, प्रक्षालित चरण युगल वाले हैं। पिछली शताब्दी से अभिषेक को प्रक्षाल बोलने की एक आगम विरुद्ध परिपाटी चल पड़ी है। प्रक्षाल का अर्थ धोना होता है, तो भगवान को धोया नहीं जाता, पर कई लोग बोलते जा रहे हैं, वो उनकी आदत में आ गई वो बात। अगर वो चाहें तो उस आदत को बदल लें और आगम में जो लिखा है उसी शब्द का प्रयोग करें कि भगवान का अभिषेक करो, नमन करो। प्रक्षाल तो तीन चीजों का होता है, जैन शास्त्रों में आप खोज करना तो आपको प्रक्षाल शब्द तीन स्थानों पर मिलेगा। पहला, अभिषेक के पहले पीठ प्रक्षालन होता है, यानी जिस आसन पर भगवान को विराजित करके अभिषेक किया जाता है, पांडुक शिला पीठे जिरन स्थापयामि ऐसा कहते हैं ना, उसका प्रक्षालन पहले करते हैं, फिर भगवान को उस पर श्रीकार लिख करके विराजमान करते हैं। तो पहला है पीठ प्रक्षालन, और दूसरा है चौके में जब गुरुजनों की नवोपचार विधि की जाती है तब पाद प्रक्षालन होता है, गुरुओं के चरणों का प्रक्षालन होता है। पैर धोए जाते हैं, धारा नहीं की जाती पैर पर, पैरों को धुलाया जाता है। जो ऐसे धारा करते हैं वो विधि नहीं है, प्रक्षालन करना होगा आपको। प्रक्षालन का अर्थ है पैर धोना। धोगे तब तो धूल मिलेगी सिर पर लगाने को, और इसीलिए धोए जाते हैं चरण। वसुनंदी श्रावकाचार्य लिख, कई बार ऐसा प्रश्न पूछने लोग, कोई मुनिराज आए और फिर वो लोग विधि कर रहे हैं, उन्होंने पैर धुलाए उसके बाद गंधोदक को सिर पर नहीं लगाया, तो बहुत से साधु लौट जाते हैं और फिर श्रावक लोग आकर के पूछते हैं कि महाराज आप हमारे यहाँ आए, लौट के क्यों चले गए? बोले कि इसको लगाया नहीं सिर, तो अब कुछ लोग जो रहते हैं वो जल्दी से अपनी असंतुष्टि को, अस्वीकृति को शब्दों में व्यक्त कर डालते हैं। अरे महाराज, ये भी कोई बात हुई क्या? कहाँ लिखा है ये वाक्य? तकिया कलम बन गया कई लोगों का। कहाँ लिखा है? तो पहली शर्त ये है कि जहां लिखा है वो अगर बता देंगे तो मानोगे क्या? शपथ लो कि मानोगे तो बताते हैं। और पहले ये बताओ कि जिस ग्रंथ से हम बताएंगे वो ग्रंथ आपको मान्य है कि नहीं? 90 के दशक में किसी ने ग्रंथों की सूची बनाई, उसमें 53 ग्रंथों के नाम थे जिनको उन्होंने अमान्य कर दिया कि ये ग्रंथ हम मान्य नहीं करेंगे। और उनमें अधिकतर ग्रंथ ऐसे थे जिनमें पंचामृत अधिक का वर्णन था। तो फिर भाई ऐसे ये मनपसंद विभाजन नहीं चलता। जिन शासन है वसुनंदी श्रावकाचार्य ग्रंथ, उसमें लिखा है कि चरणों का प्रक्षालन करके पादोदयम पवित्तम सिरम्य कादूण अच्चणम कुज्जा। क्या लिखा है? कि पवित्र पादोदक को, चरणों के उस उदक को सिरम्य कादूण, सिर में लगाकर अच्चणम कुज्जा, अर्चना करो। क्या मतलब हुआ? कि पहले पाद प्रक्षालन करो, फिर उस पवित्र गंधोदक को, पवित्र गंधोदक को, शब्द पर ध्यान देना, ऐसे नींद में मत निकालना, पवित्र गंधोदक को सिर में का दो, सिर पर लगाना, और फिर अच्छणम को जा, अर्चना करना। तो विधि में कटौती करने से दान के पुण्य में भी कटौती होती है, क्योंकि ये दान जो है, पात्र दान सुपात्र दान, ये विधि पूर्वक करने पर ही अपना फल प्रदान करने वाला दान है। पड़गाहन हो रहा है और आधे लोग चौके में व्यस्त है कुछ दूसरे काम में। अरे भाई ठीक है, चौके को खाली नहीं छोड़ना, ये उचित है, लेकिन पड़गाहन देखो तो सही, आप कम से कम अनुमोदना से तो कर लो। तो वो भी क्रिया मानी जाएगी। अगर आप मन वचन काय से नहीं कर पा रहे हैं तो मन से तो करो। आप कहोगे कि नहीं हमारी अनुमोदना है, अभी हम दूसरे काम में लगे हैं, ऐसे नहीं है। आप वहां मन लगा करके, कितना समय लगेगा? बहुत ज्यादा समय लगता है क्या? तो उसमें सम्मिलित हो जाओ। पड़गान के बाद उच्चासन है। अब चौके में कितने लोग बोलते हैं कि हे गुरुवर, उच्चासन पर विराजमान होइए। कुछ लोगों को तो याद ही नहीं रहता कि ऐसा भी बोलना पड़ता है। वो अंदर जाकर के तुरंत हाथ वाथ धो करके कुछ और तैयारियों में मग्न हो जाते हैं। और वो खड़े हुए हैं गुरु महाराज, और उनको प्रतीक्षा करनी पड़ रही है कि भाई अब कौन बोल रहा है, देखें तो सही, इतने 6 लोग हैं, अभी तक एक ने भी कुछ नहीं बोला है। तो ये कोई विधि है क्या? और एक बोलेगा तो क्या बाकी सबको उस नवोपचार विधि का पुण्य लगेगा? कैसे लग सकता है? जो खाएगा उसी का पेट भरेगा ना, देखने से थोड़ी पेट भरता है। तो उच्चासन ग्रहण कीजिए, अथवा उच्चासन पर विराजमान होइए। देखो आप, आदर के शब्द ग्रहण करना एक निवेदन हो गया, और विराजमान होइए ये एक विनय हो गई। भाषा भाषा में फर्क पड़ता है। उच्चासन पर विराजमान होइए, उच्चासन विराजमान नहीं, पर प्रेपोजिशन लगाइए आप, उच्चासन पर विराजमान हुई, फिर चरणों का प्रक्षालन करते हैं, फिर अर्चना करते हैं, अर्चना के बाद प्रणाम करते हैं, ये भी नौ के गिनती में आती है। अर्चना के बाद में प्रणाम करते हैं, पांचवा स्थान प्रणाम का है, चौथा स्थान अर्चना का है, तीसरा स्थान पाद प्रक्षालन का है, दूसरा स्थान उच्चासन का है, पहला स्थान प्रतिग्रहण का है, फिर अंत के जो चार हैं वो चार शुद्धियां हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और एषणा शुद्धि। शास्त्र में एषणा शुद्धि लिखा है, पर अभी अब बोलते बोलते वो आहार जल शुद्धि में रूपांतरित हो गया है, वो सरल शब्दों की अपेक्षा से। तो उस एषणा शुद्धि में अपनी पूरी शुद्धि आ जाती है, जो दातार है उसकी पूरी शारीरिक शुद्धि आदि सब एषणा शुद्धि में सम्मिलित होती है, और भोजन की भी सारी शुद्धि उसके अंतर्गत। हम आपको जो आहार दे रहे हैं वो आगम के अनुकूल है, ये उसका अभिप्राय होता है। इसमें 14 मल नहीं है, इसमें और भी अनेक प्रकार के जो दोष बताए हैं भोजन संबंधी, वो दोष नहीं है। ऐसा भोजन हम आपको दे रहे हैं तो वो हमारी एषणा शुद्धि है, और हमने शुद्धता पूर्वक बनाया हुआ है, हमने शुद्ध वस्त्र भी धारण किए हैं, शारीरिक शुद्धि नौ द्वारों को शुद्ध किया है, और ये धर्मानुष्ठान के लिए मातृवर्ग के लिए जानकारी की बात है, और पुरुष वर्ग भी जो पहले राजा महाराजा राजकुमार बड़े बड़े बाल रखते थे, बड़े केश वालों के लिए एक महत्व की जानकारी है। उपासकाध्ययन ग्रंथ में सोमदेव सूर्य आचार्य महाराज ने लिखा है कि ये जो जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक होता है, पूजा होती है, उसके लिए स्नान के 5 भेद हैं, और 5 भेद में से जो शिर स्नान और ग्रीवा स्नान है, अगर आपने शिर से स्नान किया है तो आप अभिषेक कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं और साधु को आहार दान दे सकते हैं। अगर आपने ग्रीवा से अर्थात गर्दन से स्नान किया है तो भी आप अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और आहार दान दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद के जो 3 स्थान हैं वो नहीं चलते। वो स्नान स्नान के अंतर्गत तो गिने जाते हैं, लेकिन उन स्नानों के साथ आप ये क्रियाएं नहीं कर सकते। यशस्तिलक चंपू में ये वर्णन है। फिर एक प्रश्न आता है, देखो आज तर्क का जमाना है, बार बार जरा जरा से हमें प्रश्न उठते हैं, अरे महाराज स्नान नहीं करते तो हमें स्नान करना जरूरी है क्या? अरे भाई, स्नान के 3 भेद हैं वैसे देखो तो, फिर जल स्नान के 5 भेद हैं, शिर स्नान, कंठ स्नान, फिर और भी नीचे वाले स्नान भी होते हैं। तो मूल में स्नान के जो 3 भेद है वो है व्रत स्नान, मंत्र स्नान और जल स्नान। तो जो गुरुजन है वो व्रत और मंत्र स्नान से पवित्र है। तो आप कहोगे कि हम नहीं हो सकते क्या? ले लो, हो जाओगे, दीक्षा ले लो, अब भी हो जाओगे, उसमें कौन सी बड़ी बात। जैनम जयत शासनम, शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मा विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बुद्धि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको,
मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को।